میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو سگی بہنوں کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اولاد کی شادی کا طے کیا، ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا، یعنی خالہ کی لڑکی اور خالہ کا بیٹا ہو گیا۔ لڑکی کی جو نظر تھی وہ کچھ کمزور سی تھی۔ کچھ عرصے بعد کچھ ایسا ہوا کہ دونوں بہنوں میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ تو دونوں بہنوں میں اختلاف پیدا ہو گئے تو جو بیٹے کی ماں تھی اس نے کسی جگہ بیٹھ کر اپنی دوسری بہن کو، کیونکہ لڑائی شروع ہو چکی تھی، اب بن نہیں رہی تھی، اس سے کہا کہ تو کیا سمجھتی کہ میں تیری اندھی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کی شادی کروں گی؟ تب بڑی آئی ہے شادی کرنے کے لیے۔ یوں کر کے اس نے اپنی بہن کو جھاڑا، ڈانٹا، دل آزاری کی، دکھ پہنچایا اپنی بہن کو۔ خیر بہن کا بہت دل ٹوٹا، اور دل ٹوٹا اور وہ اتنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ جو لڑکے کی ماں تھی وہ اپنے گھر میں تھی کہ اسے وہ یاد آیا کہ نیچے گیراج کے اندر کچھ لوہے کا سامان رکھا ہوا ہے جسے ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو اس نے وہ لوہے کا سامان لینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا چل، وہ سامان تھوڑا ہیوی ہے تو مل کر تھوڑا ہم اس کو سیٹ کریں گے۔ جیسے ہی بیٹے کو لے کر وہ نیچے گئی اور جو لوہے کے پائپ وغیرہ جب اس سے اٹھائے تو غلطی سے ایک پائپ اس کے بیٹے کی آنکھ میں لگ گیا۔ جسے اس کے بیٹے کی آنکھ میں پائپ لگا تو اس کی جو آنکھ تھی وہ ضائع ہو گئی اور آنکھ باہر آ گئی، اور اس کے بیٹے کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ جیسے اس کی آنکھ ضائع ہوئی فوراً اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ مجھے میری بہن کے دل دکھانے کی سزا ملی ہے، کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کو کہا کہ تیری بیٹی اندھی، کہ یعنی تیری بیٹی اندھی ہے، میں نے اپنی بہن کو کہا، تو چونکہ میں نے اس کا دل دکھایا لہذا اس سزا میں میرے بیٹے کی آنکھ میرے ہاتھ سے ضائع ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہیں کسی میگزین ویگزین میں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ہمارا موضوع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کما تدین و تدان، جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کما تدین و تدان، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ برا کریں اور آپ کے ساتھ بھلا ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس بڑا عبرت والا ایک واقعہ ہے کہ ایک شہر میں ایک مشتی تھا، نہیں پہلے مشکوں سے پانی پلائے جاتے، مشک بھر کے لاتے تھے، مشکیزے بھر بھر کے لایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی مشکی تھا جو 30 سال سے ایک گھر میں پانی بھر کے دیا کرتا تھا، اور جس گھر میں وہ پانی بھر کر دیتا تھا اس میں باقاعدہ ایک عورت بھی تھی، پوری فیملی تھی۔ 30 سال وہ یہ خدمت کرتا رہا۔ ایک دن وہ پانی دے رہا تھا تو جو اس کے گھر میں جو ایک عورت تھی، یعنی جس مالک کی جو بیوی تھی یا جو بھی تھی، اس نے जज्बात में आकर उसका हाथ पकड़ लिया, यानी उसकी नीयत में कुछ खराबी पैदा हुई कि वो नेक औरत थी, वो हाथ देकर हाथ बैठ नहीं गई कि चलो गैर मर्द ने हाथ पकड़ लिया, उसने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया और हाथ छुड़ाकर वो अंदर दाखिल हो गई कमरे अपने घर के अंदर। उसको भी वशकी को भी थोड़ी नदामत हुई कि मुझसे भूल हो गई, नहीं करना चाहिए था। खैर वो घर में बैठ गई। शाम को जब उसका शौहर आया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, शाम को जब उसका शौहर आया तो बीवी ने छूट में एक सवाल किया अपने शौहर से, ये बताओ आज दुकान पर तुमसे कोई गलती हुई है? अब जो शौहर था वो सोनार था, गोल्ड किसकी शॉप थी, उससे कहा एक औरत को चूड़ियां देनी थी तो मैंने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया, बोला तेरा नास हो, तूने दुकान पर किसी औरत का हाथ पकड़ा या किसी मर्द ने तेरी औरत का हाथ पकड़ लिया, तू सीधा रहता तो तेरे बीवी के साथ भी ये मसला ना होता। जैसी करनी वैसी भरनी। यानी जो लोग अपनी इन आदतों में पड़े रहते हैं उनको इस बात से डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम किसी के साथ कुछ करें और ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए। बाद में जो बात समझाना चाहता हूं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मैं खुलकर बात इसलिए नहीं कर सकूंगा, इस्लामी बहनें भी पर्दे की हालत में सुन रही हैं, औरत को भी सोचकर बैठना चाहिए, जैसा करेगी वैसा भरेगी, मर्द जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, वाह। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौजमुल औसत की हदीस है, आप फरमाते हैं पाक दामन इख्तियार करो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, तुम्हारी औलाद तुमसे अच्छा सुलूक करेगी। एक बेटे ने तंग आ गया था अपने बाप से, तो बाप को भेला फुसला कर एक पहाड़ी पर ले गया कि वहां जाकर अपने बाप को कत्ल करे। जब मैंने बाप का किस्सा में वाकया पढ़ा है, तो जैसे ही अपने बाप को कत्ल करने लगा तो बाप ने कहा बेटा मैं समझ गया था कि तू मुझे क्यों लाया है, देख तुझे अगर मुझे कत्ल करना यहां नहीं कर उस पहाड़ी पर कर, तो उस पहाड़ी पर क्यों करो? कहा उस पहाड़ी पर बेटा मैंने भी अपने बाप को कत्ल किया था और कल तेरा बेटा तुझे उसी पहाड़ी पर कत्ल करेगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप गंदुम का दाना बोए और जो निकल आए, ये नहीं हो सकता। आप जिस फल का बीज डालेंगे वही फल दरख्त देगा, ये कुछ चेंज नहीं हो सकता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बाप बीमार हो गया, बूढ़ा था बेचारा, अब बेटी उसकी जवान थी, छोटे भाई बहन भी थे, अब घर में को रोजगार नहीं था, क्या करती? बाप बीमार, दवाई महंगी, खाने पीने के मसले, बच्चे भूख से रोए, जॉब ढूंढी तो बेटी को कहीं जॉब ना मिली, लड़की को शैतान ने वसवसा डाला, उकसाया उसको कि अब अपना जिस्म बेचकर ही दो पैसे कमा ले, बूढ़े बाप की दवाई भी करनी है, भाई बहनों को खाना भी खिलाना है। पहले सब भाई वो गंदे इरादे के साथ घर से बाहर निकली, रात देर तक वो बाहर खड़ी रही। घर जब वापस आती है तो बूढ़ा बाप पूछता है बेटा कभी तुम घर से इतने बाहर नहीं रही हो, आज खैरियत कहां चली गई थी? बेटी ने अपने अब्बा जान को सब कुछ सच सच बता दिया, तो घर के ये हालात थे, मुझे देखा नहीं गया और मैं यूं घर से बाहर चली गई ताकि मैं दो पैसे कमा कर लाऊं, भाई बहन भूख के मारे परेशान है। मगर अब्बा जान बड़ा अजीब मामला हुआ मेरे साथ। तो बेटी क्या हुआ? अब्बा जान मैं रात भर सड़क के किनारे खड़ी रही कि कोई मर्द मेरी तरफ आएगा, लेकिन अब्बा जान किसी मर्द ने मेरी तरफ आंख उठाकर ही नहीं देखा, मैं यूं ही वापस आ गई। तो बाप ये सुनकर गुस्से में नहीं आया, मुस्कुराया। बाप मुस्कुराया तो बेटी कहे अब्बा जान मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहा बेटी मुस्कुराते रहा हूं कि कोई मर्द तेरी तरफ नजर उठा के कैसे देखता, जब आज तक तेरे बाप ने किसी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हर इंसान को चाहिए कि अपने घर, अपने खानदान, अपनी आदतें, अपनी जायदाद, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपने कारोबार सबका जायजा ले। एक तादाद होती है जो मिलावट कर 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 के धोखे दे 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 कर बेचती है। मुझे एक मेरा जानने वाला मिला तो उसमें एक ऑफर हुई थी, तो मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। उसको एक घी वाले ने ऑफर की थी, मुझे खुद उसने बताया, मगर उसको अल्लाह ताला की रहमत, उसको दावत इस्लामी का माहौल मिला हुआ था, तो उसने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। मगर ऑफर सुने हैं, ऑफर क्या थी, घी के कनस्तर आते हैं ना, घी के कैन बड़े बड़े, तो उसको ऑफर ये हुई थी कि तुमने घी निकालना है और उसी घी में तुमने मोम डाल देना है, जितना घी निकालो, ताकि इसका वेट सेम हो जाए। तो मिलावट करनी है तुमने मोम की। उसने कहा यार भाई तुम मुझे क्यों मतलब इस काम में ला रहा है, तुझे पता है कि घी बच्चा बच्चा लेता है, बच्चों की गिजा में घी डालते हैं, बच्चे माजूर हो गए मर गए, क्या मैं इनकी बदवाई लूंगा, ऐसी हराम रोजी मुझे नहीं कमानी। इस तरह करके उसने कुछ को समझाया और लौट कर आ गया। तब मुझे पता चला कि लोग किस किस तरह की मिलावट करते हैं, यानी बाज लोग ऐसी मिलावटें करते हैं, दवाइयां, फेक मेडिसिन, जाली मेडिसिन, चीजें गलत बेचते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तरह तरह के अंदाज से हराम माल कमाते हैं। कई ऐसे आपको मिलेंगे प्यारे इस्लाम भाइयों, जिनके माल में इनकी बहनों का विरसा है, किसी के माल में बेवाओं का विरसा है, किसी के माल में बेवा मां का विरसा शामिल है। ये बदबख्तों ने मां की विरासत भी खा गए, ये बहनों की विरासत खा गए, ये खानदान के लोगों की विरासत खा गए। कई आपको मिलेंगे जिन्होंने बाकायदा जमीनें खा गए, प्लॉट खा गए, बेवाओं के प्लॉट खा गए, यतीमों के प्लॉट खा गए, क्या क्या चीजें खाकर बैठे हुए हैं, और बैठकर ये समझ रहे कि कुछ भी नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी सारे बोले जैसी करनी, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, किसी के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। मैं इंशाल्लाह आपको हदीसें भी सुनाऊंगा, लेकिन ये वाकियात इतने हैं कि मैं भी कहता जा रहा हूं, मुझे वाकियात और पढ़े हुए वाकियात याद आते चले जा रहे हैं, इतने वाकियात हैं। एक शख्स बड़ा मालदार था, उसके हाथ में दर्द शुरू हो गया, वो बड़ा से इलाज कराया, दुनिया भर के पैसा था, डॉक्टर वॉक्टर सब दिखाए, दवाई वगैरह सब कराई, लेकिन इसका इलाज हो नहीं रहा था, बीमारी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। किसी ने कहा यार फला वो रूहानी इलाज वाला है, वहां से रूहानी इलाज में फर्क पड़ता है, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत होती है, तावीज मिल जाते हैं, कोई दुरुद विरुद्ध दुरुद मिल जाता है, कोई दम के से फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो वो गया किसी के पास, और वो था भी बड़ा मतलब के हो जाते थे काम उसके यहां। तो उसने कहा बाबा जी मेरे हाथ का दर्द नहीं जा रहा। बाबा ने कहा ठीक है करते हैं इलाज, चंद दिनों तक इलाज करते रहे बाबा जी, मगर इलाज करते रहे यानी ये कहते दर्द बढ़ता रहा, जो जो दवा होती गई उल्टा हो रहा था। वो कह रहे थे बाबा जी मेरे दर्द जा नहीं रहा है, और वो कब भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जो मुझे आता था मैंने किया, आपको आपने भी किया, मेरे साथ ही मिलकर आपको पढ़ने भरने का दिया था। अब वो बाबा जी ने हिम्मत करके एक बात की, हिम्मत करके क्योंकि ये भी आपको समझाता हूं, आदमी था बड़ा, बड़े आदमी को समझाना आसान नहीं होता, छोटे आदमी को समझाने में इतनी दिक्कत नहीं, बड़े आदमी को ऐसा लगता है कि जो कुछ मेरे बड़ा हुआ ना मैं यूं किया, ये सब मेरे अकल की मेरी जानत की मेरी समझदारी है, और इसी समझदारी इसी जानत में ये दिवालिया भी हो जाता है। ये समझता है जो कुछ मैंने अचीव किया है ये मेरी काबिलियत और मेरी सलाहियतों की वजह से अचीव किया है। इसको समझाना आसान नहीं होता बड़े आदमी को, उसको यह होता है घमंड होता दिमाग के अंदर कि जो कुछ, हालांकि इसी के होते हुए ये फेल भी हो जाता है, इसी के होते हुए खत्म भी हो जाता है। अक्ल हर जगह कहां काम आती है, वो कोविड में क्या अकल काम आई, कोरोना में क्या अकल काम आई, कोविड में क्या साइंस काम आई, कोरोना में क्या मेडिकल काम आई, बता कुछ नहीं है, नथिंग, लाशों की लाशें उठी। तो नहीं, इंसान बेबस लाचार है, इसको जो खूबी मिली अल्लाह की तरफ से मिली है। इसका एक जुमला बेहतरीन होता हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। इज्जत मिली, शौहरत मिली, मकाम मिला, मनसब मिला, जो भी नेमत मिली है ये अल्लाह की तरफ से है, बंदे का क्या है, बंदा दो बोल गलत बोलता है फौरन ढा करके नीचे गिर जाता है। तो बड़े आदमी को छोटा आदमी इतनी जल्दी बहस नहीं करता, बड़ा आदमी क्या समझते हो मेरे को। ये इस तरह बाबा डर रहा था। अब डरते डरते बाबा ने जो कहा वो मैं बता रहा हूं। बाबा ने कहा सेठ साहब बात यह कि मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अपना माजी में झांक कर देखें, कोई गलती बड़ी तो नहीं हो गई। और वही हुआ, सेठ साहब नाराज हो गए। बोला बाबा जी इला तुमसे होता नहीं है, तो मुझे मेरे माजी में लेकर जा रहे के चक्कर में हो। तो नाराज होकर बड़बड़ करता हुआ बाबा जी के पास से तो चला गया। बाबा जी अब क्या बोलता, बात आई गई हो गई। थोड़े दिनों के बाद बाबा जी कहीं जा रहे थे सड़क के किनारे, दूसरे किनारे से वो सेठ साहब आ रहे थे। सेठ साहब बाबा जी को देख के भागते हुए आए। बाबा जी पहचानते हो? तो भैया कौन हो आप? अब बाबा जी के पास 100 आदमी आते हैं। वो याद है वो मैंने आपको, हाँ याद आ गया याद आ गया। बाबा जी आज सही हो गया, चलो मुबारक हो। अब बाबा जी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्यों सही हुआ पूछू। मुबारक हो भाई आपको, आपका आज सही हो गया, चले अल्लाह आपको खुश रखे। बाबा जी पूछो तो सही, कैसे सही हुआ? क्या पूछू, पहले का बोला हुआ अभी तक याद है। क्या बाबा जी मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं शर्मिंदा हूं। असल में उस टाइम तो मैं बोल के चला गया, रात को जब लेटा तो आपकी बात याद आई और मैं सोच में पड़ गया कि यार माजी का बाबा बोल तो रहा है, सोचने में हरज क्या है। तो मैं थोड़ा माजी में चला गया और वहां जाकर मैंने सोचा कि मेरी कोठी जो मेरा बंगला था उसके साथ एक कॉर्नर का प्लॉट था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कॉर्नर का प्लॉट मुझे मिल जाए, और कोठी बड़ी हो जाएगी और यूं लोकेशन अच्छी हो जाएगी और थोड़ा वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। मैंने मालूमात की तो वो प्लॉट एक बेवा औरत का था और उसके 2 यतीम बच्चे थे। मैंने कोशिश की बेवा औरत से प्लॉट खरीद लूं, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं प्लॉट नहीं बेचूंगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनका बाप छोड़ करके इनको काम आएंगे, हमें नहीं बेचना। मुझे मेरे दिमाग में प्लॉट फंस गया, बात थी तालुका थे पैसा था, हाथ पैर मारे मैंने, तालुका से पेपर बनाए, फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए, साइने वगैरह की और प्लॉट मैंने अपने नाम पर फेक डॉक्यूमेंट के जरिए जो भी करके मैंने अपने नाम पर प्लॉट तो करवा लिया और मैंने अपने उस प्लॉट पर काम शुरू करवा दिया। और काम जब प्लॉट पर शुरू हुआ, मजदूरों ने काम शुरू किया, तो क्या था कि वो औरत आती बेवा औरत और ये मजदूरों को बोलती थी। अब मैं दूर से देखकर मैं तो निकल जाता था, मैं सामने नहीं आता था इस बुढ़िया के। अब हुआ ये कि प्लॉट भी बन गया, घर भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब मुझे उसका हाथ उठाना बाबा याद आता रहा रात को। तो मैं अगर हो ना, लगता है इस औरत ने कुछ बद्दुआ वगैरह दिए मेरे को। मैं अब उस औरत की तलाश में निकला तो पता चला वो औरत शेर छोड़कर चली गई, वहां यार कुछ राय नहीं था। मैंने उसका एड्रेस मालूम किया, मैंने उसे कॉन्टेक्ट किया तो मुझे उसका एड्रेस मिल गया। मैंने उससे रब्ता किया कि माँ ये बताओ मुझे पहचानती हो, तो तुझे कैसे भूलूंगी, तू वही है ना जिसने मेरे यतीम बच्चों का माल खाया था, तू वही है, तुझे कैसे भूलूंगी मैं। कब अम्मा एक बात तो बता, ये जो तू हाथ उठा उठाकर कुछ कहती थी प्लॉट पे क्या कहती थी? कब मैं अपने रब से दुआ करती थी मौला उसने अपनी ताकत दिखाई है तो अपनी ताकत दिखा। तो उसने कहा माँ अल्लाह ताला की ताकत ऐसी नजर आई है कि मेरा हाथ खराब हो गया है, तेरी बद्दुआ असर कर गई है, मैं माफी मांगता हूं तुझसे। तो मैंने उस औरत से माफी मांगी, उसको उसकी चीजें दी, पैसे दिए, जो कुछ मुझे देना था मैं करके मैंने कोशिश की कि औरत मुझसे अम्मा राजी हो जाए। अम्मा को राजी किया और मैंने अम्मा को कहा अम्मा जिस हाथ से उठाकर बद्दुआ की थी उसे हाथ से उठाकर दुआ कर दे। तो अम्मा ने हाथ उठाकर दुआ की, अभी अम्मा के हाथ नीचे भी ना आए थे कि भाई मेरा ये हाथ सही हो गया। जैसी करनी गौर करें मेरे प्यारे साहब, अपने माल में, अपनी दौलत में, अपने पूरे सफर में, अपनी पूरी जिंदगी में क्या क्या ने किया है बुराई के नाम पर। अब देखें उस मर्द का हाल देखें, उससे एक औरत के साथ बुराई की, घर में इसकी औरत के साथ बुराई हो गई, उससे कोई बुराई नहीं की तो उसकी बेटी के साथ भी बुराई नहीं हुई, उससे अपनी बहन की दिल आजारी की उसके साथ भी बुरा हो गया, उससे उसके साथ भलाई की उसके साथ भला हो गया। एक भलाई की भी चलो बात मैं आपको सुना दूं, भलाई की भी बात बड़ी प्यारी मेरे पास लिखी थी कि हजरत सैयदना अब्दुल वाहब शारानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते कि मेरी बीवी फातिमा बिनते उम्मे अब्दुलरहमान के दिल पर वरम पड़ गया। मुझे बहुत तशवीश हो रही थी कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवाने के ताल्लुक से, बीमारी दूर नहीं हो रही थी, میں خالی راستے میں تنہا موجود تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا اپنے سامنے موجود سوراخ میں ایک مکھی کو, مکھی خور جانور جو مکھی کھا جاتا ہے وہ تنگ کر رہا ہے, اس سے اس کو نجات دلا دے, ہم تمہاری زوجہ کو بیماری سے نجات دے دیں گے. میں نے جا کر سوراخ دیکھا تو اس میں انگلی جانے کی گنجائش نہیں تھی, اس لیے میں نے ایک ٹنکا لے کر لکڑی کا جیسے ماچس کی ٹنکا سمجھ لیں, لے کر اندر ڈالی اور مکھی سمیت اس جانور کو بھی باہر کھینچ کر پھینک دیا, تو مکھی سے وہ جو مکھی کو جو جانور تنگ کر رہا تھا اس سے میں نے مکھی کی جان چھڑوا دی. اسی وقت میری زوجہ بھی ٹھیک ہو گئی اور اسے تکلیف سے نجات مل گئی. جیسی کرنی ویسی بھرنی, اپنے افعال اپنے اعمال کو دیکھیں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, حدیث پاک میں کیا آتا ہے, دنیا جیسا یہاں بو گے ویسا وہاں کاٹو گے. جو یہاں برائی بو رہے ہیں, بدکاریاں بو رہے ہیں, شراب بو رہے ہیں, نماز قضا کرنا بو رہے ہیں, حرام روزی بو رہے ہیں, قتل و غارت گری کے بیچ بو رہے ہیں, فتنے فساد کے بیچ بو رہے ہیں, سازشی اور ایک بڑا خرافاتی دماغ ہوتا ہے بعضوں کا, ایسے وائٹ کالر خرافاتی لوگ ہوتے ہیں, وائٹ کالر خرافاتی لوگ ہوتے ہیں, وائٹ کالر بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہمارے اندر بھی کوئی بہت بڑا شیطان جو ہے نا وہ اپنی دھمالے مچا رہا ہوتا ہے. ایسے سیدھے سادے نظر آتے ہیں لیکن انہوں نے اتنا معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے, خاندانوں کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے, مرد اور عورتوں میں فتنے فساد پھیلے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کئی لوگ ایسے ہیں جو برائی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں, اشاعت فاحشہ کہتے ہیں اس کو. یہ سب کو ڈرنا چاہیے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جنہوں نے میڈیا کے ذریعے, دیگر چیزوں کے ذریعے قوموں کے مزاج کو, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جنہوں نے نشے کی عادت بنا بنا کر میرے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جنہوں نے شرابیں پلا پلا کر ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں, جوا کھیلا کھیلا کر دوئے کا عادی بنا بنا کر ہمارے نوجوان ہمارے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو. یہ نہ سمجھو کہ تم برا کرو گے تمہارے ساتھ بھلا ہوگا, بے وقوف ہو, بے وقوف, سینس لیس ڈسکشن ہے یہ کہ میں برا کروں گا میرے ساتھ بھلا ہوگا. ارے دیوار پر کالا رنگ کرو گے کیا سفید نظر آئے گا, کالا رنگ کرو گے تو کالا نظر آئے گا. بچپن سے سن رہے ہیں, اسکول کے زمانے میں سن رہے ہیں, جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی گر جاتا ہے. سنا نہیں سنا, پھر بھی گڑے ہی کھودتے ہیں, بزنس میں گڑے کھودتے ہیں, اس کو یوں کر دے, اس کو یوں کر دے, اس کا ایسا کر دے, اس کو ویسا کر دے, اس کو یوں کر دے, یہ یوں ہو جائے. ارے خدا کے بندو, تم سازشیں کر رہے ہو, تمہیں کوئی جانتے نہ جانے, تمہیں کوئی سنے نہ سنے, تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ طاقت والا ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ مظلوم کو اس کا بدلہ دلاتا ہے. کیسے سوچ لیا کہ تم بیٹھ کے اتنی بڑی سازشیں کرو گے, گھر میں بیٹھ کر سازشیں کرو گے, میاں بیوی کو لڑاؤ گے؟ جی ہاں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میاں بیویوں میں لڑائیاں پیدا کروا دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑے واضح حدیث ارشاد فرمائی ہے, میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں, اس حدیث کو سنیے کہ جو لوگ میاں بیوی میں جھگڑا کرواتے ہیں, جی ہاں, جا جا کر ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, یعنی جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابارے وہ ہم میں سے نہیں. تو کرتے, خاندان کی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. ایک عورت نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا. اب آپ تو اللہ کے ولی تھے, آپ نے اس عورت کی بینائی کے زائل ہونے, یعنی وہ اندھی ہو جائے, اس کے لیے آپ نے اس کے لیے دعا کر دی. پیارے سائیں بھائیوں, وہ آپ کی دعا کے ہوتے ہی وہ عورت اندھی ہو گئی, نابینا ہو گئی. اب جیسے اس کی آنکھیں چلیں گی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. عورت نے آپ سے رابطہ کیا, رجوع کیا, معافیا مانگی, توبہ کی, بہت کچھ کیا, حتیٰ کہ آپ پر اب اس کو رحم آ گیا, آپ کو
कि बेचारी अंधी हो गई है, फिर आपने हाथ उठाकर दुआ की, मौला की आंखों का नूर वापस कर दे, आपकी दुआ कबूल हुई और उसकी आंखें वापस आ गई।
तो ये अजीब हमारे यहाँ माहौल है कि हमारे यहाँ तो माजल्ला सुबह माजल्ला ये मियाँ बीवी को आपस में लड़ा देते हैं। अच्छा बादों का क्या होता है, थोड़ी बहुत हो जाती है ना लड़ाई, मियाँ बीवी हो जाती है आपस में, डिस्प्यूट हो जाता है मियाँ बीवी में, भाई सगे भाई बहनों में होता है, एक ही बाप की औलाद है यार, एक ही बाप की औलाद है, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही माहौल मिला है, एक ही अंदाज इनको मिला था, एक ही सोच पर परवरिश हुई थी, फिर भी भाई बहन लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं। तो ये तो दो अलग खानदान के दो मर्द और औरत अलग हैं, उसकी 17-18-20 साल परवरिश अलग हुई है, उसकी 17-18-20 साल परवरिश अलग हुई है, अब दोनों निकाह में आए, वक्त लगता है अंडरस्टैंडिंग होने में, बाद अगर शुरू शुरू में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाद में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाद अगर शुरू में भी संडे मिस्टैंडिंग हो जाती है, यानी ये आगे भी चलता रहता है, लेकिन घर चल जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब इनके किसी भी डिस्प्यूट के अंदर कोई ऐसा बदयानक और ऐसा जालिम और ऐसा गंदा मर्द या ऐसी गंदी जहनियत वाली औरत बीच पड़ती है, हाँ तेरे साथ ऐसा करता है, ओ ऐसा मत किसी काम का, छोड़ दे इसको, फला करता था यूं हो गया, फला करता था यूं हो गया, उसकी बीवी ने छोड़ दिया, नाक रगड़ कर आया था वो, हाँ नाक रगड़ कर आया था वो, जली जाती है नाक, क्या रगड़ेगा उसकी, नाक रगड़वा दी उसने, घर तोड़वा दिया। तो कभी कोई मर्द उसकी बीवी के बारे में, यार तुम्हारी बीवी नहीं यार सही नहीं है यार। अच्छा ये कब होता है, जब आप अपनी बीवी की बात अपने किसी दोस्त या गैर मर्द से करते हैं, ये कितनी, आप समझिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है, कोई भी ऐसा है, बोले कितना ही जिगरी दोस्त है, करीबी दोस्त है तो पराया मर्द ना यार, इससे तुम अपनी बीवी की बात कैसे करते हो, शर्म नहीं आती आप यार अपनी बीवी का तस्करा किसी गैर मर्द के सामने कर रहे थे। तो हमारे माहौल भी बड़ा अजीब है, जैसे ही वो थोड़ा आएगा मूड खराब होगा, अरे लगता है बीवी ने दो बातें सुनाई है तुझे, लड़का आया बीवी से, अच्छा वो भी मुंह बंद नहीं रखेगा, मैं क्या करूं यार, सुबह उठकर मगजमारी करती है यार, अब ये बोलना शुरू करेगा बीवी के बारे में, और बीवी के सामने बीवी को बेइज्जत करेगा अपने दोस्त के आगे। क्या ये सही है कि आपकी गैरत ही इस बात को पसंद करती है कि आप गैर मर्द के आगे अपनी बीवी का जिक्र करें, वो भी गंदा हो अच्छा हो, बीवी का जिक्र मर्द करे कैसे यार, दो मियां बीवी के दरमियान लड़ाई थी, तो उसके दोस्त उसको बोला हुआ क्या बात है भाई, सुना है तेरी और तेरी बीवी की बनती नहीं है, खैरियत तो है क्या, मैं गैर मर्दों के आगे अपनी बीवी की बातें नहीं करता, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। थोड़े अरसे के बाद तलाक हो गई, दोस्त था ही अजीबो गरीब किस्म का, तो खुराफाती दिमाग था उसका भी, वो कहने लगा अच्छा अब तो बता भाई, अब तो तेरी बीवी नहीं है ना, क्या हुआ था, बोला गैर औरतों की बातें मैं गैर मर्दों से नहीं करता। क्या है यार गैरत ही साध्वी के अंदर, इसका कोई छोटा मोटा कुछ छटांग दो छटांग अपने को मिल जाएगा ना, एक ही मानो जिंदगी बदल जाएगी हमारी। अच्छा बहनों की बातें करते हैं, भाई यार मेरी बहन के बारे में क्या बताओ, बहन की बात करेंगे, माँ की बात करेंगे, बीवी की बातें करेंगे, प्यारे साई भाइयों क्या हो गया। अच्छा यही औरत ये जाकर पड़ोस से, अब मर्द कभी घर से निकला ही है तो फौरन बाद 5 घंटी बजेगी, गए हाँ आवाज आ रही थी रात को, खैरियत तो थी, अब वो सारी दास्तान सुनाएगी मेरे शोर ने मेरे साथ क्या किया था पड़ोसन से, और पड़ोसन में देखो अल्लाह की वलिया होगी जो उसको अच्छा सबक सिखाएगी, वो उसको और दो बातें चढ़ाएगी, और ये आपस में लड़ाइयां पैदा हो जाती हैं। मेरी तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों से दरखास्त है, आपसे आज खुलकर बात कर रहा हूं ये बात, अगर आप मैरिड हैं शादीशुदा हैं तो मैं दोनों से ये बात अर्ज कर रहा हूं, आपस की बातें आपस में निपट लो, बीच में किसी को मत आने दो, बसा औकात बदकिस्मती के साथ लड़की या लड़के के मां बाप भी घर तोड़वा देते हैं, ये भी सुलह नहीं करवाते, ये भी मोहब्बत पैदा नहीं करवाते, कि अगर देखते हैं कि जनाब अगर बहू के साथ कोई मसला हो रहा है तो बेटे को अच्छा सही कर रहा है बेटा तो सही कर रहा है ही ऐसी, अरे घर टूट जाएगा यार, साथ तेरा क्या जाएगा, तेरा बेटे का घर टूट जाएगा, ऐसा नहीं कर, वो भी उसको भी शेम मिलती है ना, वो तो लड़के निकला है बीवी से तंग आकर आया, उसको तो हमदर्दी चाहिए थी, या जाकर बेटी अपने मां बाप को बोलेगी कि जना मैं सही हुआ
हमें तो पहले अंदाजा था, क्या पहले अंदाजा, पहले जब शादी की तो चांद का टुकड़ा था तुम्हारा दामाद तो, और ये परी थी, अब ये चांद का टुकड़ा हो गया पत्थर और ये परी हो गई चुरे, को दो पांच दस दिन में महीने दो महीने में सबकी शक्लें बदल गई, दिमाग बदल गया, शक्लें नहीं बदल दी। तो कब ऐसा होता है क्या आपस में लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो, ना इत्तेफाकी ना हो, खाने में पीने में उठने में बैठने में आने में जाने में खर्चे पानी में मियां बीवी में चपकड़ी होती रहती है। नंबर वन, दोनों इस बात का तय कर लें कि हमने हमारी दोनों की बातें कहीं बाहर नहीं करनी, और अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, इतनी समझ तो होनी चाहिए यार, पानी को कौन मम बोलता है भाई, हमें दूध को दूधू बोलता है, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या बोले सफेद कपड़ा चाहिए और काला लेकर आ गए हो यार, फिर आके देखो कितना सफेद कपड़ा लाया हो, सारी समझ आती है, काले सफेद पैसों की, ये पौंड है, ये यूरो है, ये रुपीज है, ये करेंसी है, सब समझ आती है। लेकिन मियां बीवी आपस में दूसरे की बात करेंगे, कभी पूछोगे नहीं करनी चाहिए थी, समझ नहीं आई थी बस कर गए थे, ये समझ नहीं आई आपको, पेट हल्का करना था, बुराइयां करनी थी, गीबतें करनी थी, चुगलियां करनी थी, हमदर्दियां लेनी थी कि मेरा शोर मुझे जुल्म करता है, और शोर ने हमदर्दी करनी थी कि यार कहां फंस गया हूं मैं, फिर ले जाएंगे सुलह कराने के लिए इसी तरह के लोगों को। हालांकि दो मियां बीवी में जब लड़ाई हो तो सुलह करने वाला बीच का ग्रुप गुरु होना चाहिए, कुरान करीम में ये तालीम मौजूद है, मगर उस गुरु का काम यह है कि जो सुलह कराए ना कि लड़ाई पैदा कराए। अब ये आता नहीं है लोगों को इतना, इसलिए मेरी तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों से दरखास्त है, अगर आप कंबाइंड फैमिली में भी रहते हैं और अगर आपके कमरे के अंदर दो मियां बीवी में लड़ाई हो गई है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कमरे से बाहर निकले, मुस्कुराते हुए निकले, माँ बाप को पता ही ना चले कमरे में क्या हुआ यार, अगर खुदा ना करते कोई प्रॉब्लम हो गया, चलो छोड़ते छोड़ते गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया कि लड़का छोड़ नहीं जा रहे, तो आपको अपनी माँ के घर पर कि चलो एक दिन गुजार कर आ जाएगी, छुट्टी गुजार कर आ जाएगी, अब लड़ाई होगी गाड़ी में, क्यों लड़ाई होगी, इसको आइसक्रीम खानी थी, वनीला खिला दी स्ट्रॉबेरी, मेरे भाई लाओ स्ट्रॉबेरी ने वनीला पर लड़ाई होती है यार, आइसक्रीम में लड़ाई हो जाती है यार, तरबूज की जगह पर आम पर लड़ाई हो जाती है, छोटी मोटी चीजों पर लड़ाई जाती है, जूते की लेस नहीं मिली, जूता सही नहीं हुआ, जूता पॉलिश की वजह से लड़ाई हो जाती है, आपकी वजह से मेरा दुपट्टा स्त्री सही नहीं हुआ, ले गाड़ी में लड़ाई हो गई, जो बच्चा कुछ स्त्री थी वो भी खराब हो गई, ये लड़ाई होती है हमारी। अब ये घर पर जाएगी तो उसकी माँ इसका मुंह देख के खुश हो जाएगी, इसकी माँ डायरेक्ट इसकी माँ छूट गई पूछेगी क्या हुआ तेरा मूड खराब है, कुछ किया होगा इस आदमी ने, डायरेक्ट उस बोलेगी हाँ रास्ते में ये हुआ था, जब माँ ये नहीं बोलेगी कि तू नेक औरत परहेजगार औरत परहेजगार तू इतनी अल्लाह की नेक बंदी, तू तो चुपी बैठी होगी गाड़ी के अंदर, तूने तो कुछ भी नहीं बोला होगा, तू तो चुपचाप सुनकर आ गई होगी सर झुकाकर, ये नहीं बेटी बताएगी कि अम्मी मैं भी तेरी बेटी हूं, दो बातें सुनी थी चार सुना कर आई हूं, ये तो बेटी कभी भी नहीं बोलेगी अपनी माँ को, माँ खुद तो पूछेगी जी बेटी क्या हुआ, तो बेटी बोलेगी ये हुआ, रात को भी शोर को बोलेगी मैं तो पहले कहती थी दामाद सही आदमी नहीं है, अब इसकी इंफॉर्मेशन का जरिया ये बाकी है कि 50 साल 70 साल की औरत इसको भी समझ नहीं आती कि ये शोर को बोलकर क्यों अपनी बेटी का घर तुड़वा रही है, तो बेटी को क्या चाहिए था, अभी ये कोई लड़ाई थी, चलो तो खुदा ना करे कोई बड़ी लड़ाई हो गई, माँ के घर गई हो मुस्कुराते हुए जाओ, माँ को बोल दो माँ कुछ नहीं है थोड़ा बहुत होता रहता है अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बेइज्जती नहीं हो रही आपको मारधार, हाँ खुदा ना करते मारधार हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कोई जान का मसला, कोई इज्जत और आबरू का मसला, एक अलग टॉपिक है, मगर जनरली जो घर में छोटी मोटी चीजें होती है वो तो माँ बेटी बाप बेटे भाई बहन भाई भाई में भी हो रही होती है। अब ये बातें बाहर करके क्यों अपने घर तोड़वा रहे हो भाई, मैं आपको उस शख्स से डरा रहा हूं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हो सकता है वो उनमें यहां भी बैठा बैठा हो, यहां भी बैठा बैठा हो, मैं आपको हर उस शख्स से डरा रहा हूं जो आपस में लड़ाइयां पैदा करवाते हैं, दोस्तों में, पार्टनर्स में, मियां बीवी में, हत्ता के बाप बेटों में, हत्ता के बाप मां बेटी में, मियां बीवी में लड़ाइयां कराते चुगलखोर होते हैं, ये बड़े बुरे और गंदे लोग होते हैं, इनकी जहनियत गंदी होती है, इनकी रूह को सुकून मिलता है जब दो मुसलमान लड़ रहे होते हैं, और इनको इनकी रूह की गिजा हम प्रोवाइड करते हैं इनको बातें बताकर, लेकिन इनको भी डरना चाहिए जो ये जो लड़ाई करवा रहे हैं, इनको डरना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम किसी का घर तोड़ोगे तो ये मत सोचो मैं तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। किसी के घर में आग लगाकर अपने घर में रोशनी नहीं की जाती, किसी की बेइज्जती करकर अपने आप को इज्जत नहीं दी जाती। अल्लाह पाक हमारे हाथ पर रहम फरमाए। हजरत सैयद साहब भी नबी वक्कास रबी अल्लाह तआला ये अशरा मुबशरा में इतने बड़े साहबी हैं, बहुत बड़े साहबी। इनकी एक खूबी यह है कि गजबे के मौके पर जब दुश्मनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत साहब भी नबी वक्कास थे रबी अल्लाह तआला। और हालत यह थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर इनको देते जाते थे और साहब भी नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीर दुश्मनों पर फेंकते जाते थे। मेरे आका तीर देते थे तो फरमाते साहब तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये वो साहबी है, साहब तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये एक एजाज है एक साहबी का, उसको अल्लाह के नबी ये फरमाए तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, ये इनका मकाम है। तो इनके ताल्लुक से एक मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूं कि इनके ताल्लुक से एक शख्स ने तीन इन पर झूठे इल्जाम लगाए हजरत साहब भी नबी वक्कास पर। एक राय खुदा में लड़ने के ताल्लुक से, एक माले गनीमत के ताल्लुक से, एक मुकदमात में फैसले करने में अदल ना करने के ताल्लुक से। हजरत सैयद साहब भी नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये तीनों इल्जाम अपने बारे में सुने और आपको पता चला कि ये शख्स कर रहा है, पूरा वाक्य थोड़ा तवील है मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तो आपने सुना तो अल्लाह की कसम कुछ यूं फरमाया, सुनो अल्लाह की कसम मैं इसके खिलाफ तीन दुआएं करता हूं। या अल्लाह अगर ये बंदा झूठा है, दिखाने और सुनाने के लिए खड़ा हुआ है तो इसकी उम्र तबील कर दे, दराज फरमा। ये बद्दुआ हो रही थी, इसकी उम्र तबील कर, दराज फरमा, इसके फकर में इजाफा कर दे, इसे फितनों में मुब्तला फरमा। तीन बद्दुआएं की अगर साहब नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा, ये तीन बद्दुआएं हो गई। जब कोई इससे इसका हाल पूछता तो वो कहता मैं क्या बताऊं, मैं वो बूढ़ा हूं जो फितनों में मुब्तला हूं, क्योंकि मुझको हजरत साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ लग गई है। हजरत सईद अब्दुल मलिक बिन उमेर ताबई का बयान है कि इस दुआ का मैंने ही असर देखा कि ये इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि बुढ़ापे की वजह से इसकी दोनों भवें जो थी इसकी दोनों आंखों पर लटक पड़ी थी, इतना बुरा। आपने जरा बड़ी उम्र की बद्दुआ दी थी इसको, ये बद्दुआ थी असल में, इतना बड़ी उम्र का हो गया कि इसकी सफेद धुएं इसकी आंखों तक आ चुकी थी। वो दर बदर भीख मांगकर इंतहाई फकीर और मोहताजी की जिंदगी बसर करता था और इस बुढ़ापे में भी वो राह चलती हुई नौजवान लड़कियों को छेड़ता, जिससे फिर इसको ये जिल्लत और रुसवाई का इसको मुंह देखना पड़ता था। क्यों? कि इसने हजरत साहब बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठा इल्जाम लगाया था। मेरे प्यारे साहब भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती तो उसको अल्लाह पाक उस वक्त तक रद गतल खबाल में रखेगा जब तक वो अपनी कही हुई बात से निकल ना आए। अर्ज की गई रद गतल खबाल क्या है तो फरमाया जहन्नम में एक जगह है जहां जहन्नमियों का खून और पीप जमा होगा, ऐसे शख्स को वहां रखा जाएगा। अब यहां पर मैं चंद बातें आपको एक और अर्ज करता हूं। हम लोग बैठे बैठे लोगों पर तबसरे करते रहते हैं, कोई हमसे किसी की बुराई बयान करता है तो हम उसकी बुराई सुनकर भी कुछ का कुछ कर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसकी बुराई सुनकर कोई इसका दिफा कर दे, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होगा, नहीं पा रहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग उसकी बुराई सुन सुनकर और अच्छा यूं है, ओहो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा शेय, उसको तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग बुराई पर बुराई, अच्छा इससे सुनेंगे आगे जाकर हम बयान करेंगे, उससे सुनेंगे आगे जाकर हम बयान करेंगे, झूठी बातों को आगे बयान करते हैं, गलत बातों को आगे बयान करते हैं। और ये बातें हमारी फैमिली में भी हो रही होती हैं, ये बातें हमारे दोस्तों में भी हो रही होती हैं, ये बातें हमारी कंपनी में भी हो रही, दुकानों पर भी हो रही होती हैं। अबे पता चला क्या वो नहीं है, हाँ यार अपने तो अच्छा भी समझते थे, पर क्या हो गया यार उसने ऐसा कुछ करो, क्या बोलता है, हाँ यार उसने ऐसा कर दिया, ओ ऐसा कर दिया, अच्छा वो जैसे जाएगा वो अपने आदमी से बात कर रहे, तुझे पता चला क्या, और उसने ऐसा कर दिया, जो वो अपने घर में जाकर बोलेगा पता चला उसने ऐसा कर दिया। किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफी है कि सुने सुनाई बात को आगे कर दे। हमारे यहां सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दी जाती, कोई तस्दीक, जो एक है दो वर्ड है, इंफॉर्मेशन एंड कंफर्मेशन,
मेनी टाइम, नॉट सम टाइम, मेनी टाइम, आप जब भी इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन करने के लिए जाएंगे आपको मामला चेंज मिलेगा। मामला वो होगा ही नहीं जैसा आपने सुना था, मामला चेंज हो जाता प्यारे स्वयं भाइयों, और हम उसकी बुराई सुन सुन के मजे ले रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, माशाल्लाह मजे ले रहे होते हैं। आगे बयान कर रहे थे, तोहमत बोहतान झूठी बातें किसी के किरदार के बारे में बयान कर रहे होते हैं, उसकी इज्जत दांव पे लगा चुके होते हैं, और जब उसको पता चलता है मेरे बारे में ये कुछ हो रहा है वो क्या करे। आपको पता है कई औरतें माशाल्लाह इस वजह से खुदकुशियां कर लेती हैं, उन पर झूठी तोहमतें लगा दी जाती है, उन पर झूठे बोहतान बांध दिए जाते हैं। अगर वो लड़की है ना, हाँ उसके बारे में बात कर दे, औरतें भी बात कर देंगी यार औरतों के बारे में। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मैंने जैसी करनी वैसी भरनी के तालुक से चंद बातें अर्ज की हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे के ताल्लुक से हदीस पाक के लफ्ज हैं। अल्लामा अब्दुल रब मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी शरह में लिखते हैं, यानी जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें इसका बदला मिलेगा, जो तुम किसी के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी हुआ करेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह रुसवा करे जहां उसकी बेइज्जती और आबरू रेजी की जा रही हो, तो अल्लाह पाक उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां वो अपनी मदद चाहता होगा। और जो किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद करे जहां उसकी इज्जत घटाई जा रही हो और उसकी आबरू रेजी की जा रही हो, तो अल्लाह पाक ऐसी जगह उसकी मदद करेगा जहां वो अपनी मदद का तलबगार होगा। कितनी ईमान अफरोज हदीस है। मैं आखिर में इसकी एक शरह बयान कर देता हूं, अल्लाह करे कि हमारी तबीयतें बदल जाए। यानी आज जो मैंने बयान आपको किया है, डेफिनेटली हम इसका रिजल्ट यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी तबीयतों में तब्दीली आ जाए, हमारे मिजाज में तब्दीली आ जाए, हमारी गुफ्तगु में तब्दीली आ जाए, हमारी सोचों में तब्दीली आ जाए। हम मुकाफाते अमल से डरें कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम बोलने से पहले सोचें, हम करने से पहले सोचें। अभी कुछ भी नहीं हो रहा होता बाज़ औक़ात, मगर जो हो जाता है वो हो जाता है। तो इस हदीस पाक की शरह जो इज्जत के ताल्लुक से बयान हुई, हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यारखान नईमी लिखते हैं इस तरह के, जब कुछ लोग किसी मुसलमान की इज्जत खराब कर रहे हों तो ये भी इनके साथ शरीक होकर इनकी मदद करे, इनके हां में हां मिलाए। अल्लाह पाक उसे ऐसी जगह में जलील करेगा जहां वो अपनी मदद चाहता होगा। कहते हैं मुफ्ती साहब लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला इस जुर्म की सजा में उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे इज्जत की ख्वाहिश होगी, क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में। ख्याल रहेगा ये अहकाम मुसलमानों के लिए, हाँ जो बेदीन मुर्तद इस्ताद इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, उनका मामला जुदा है। गर्व के कमा तदीन उतुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस पर गौर करना है कि मुसलमान भाई की इज्जत करो, अपनी इज्जत करा लो, इसे जलील करोगे तुम जलील हो जाओगे। तो अल्लाह पाक हमें मुसलमानों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी किसी मुसलमान की आपके साथ बुराई होती है, आप मना कर देना भाई मुझसे बुरा एक बार डिस्कस, आप हम कह तो सकते हैं ना। मैं आपको फार्मूला बताता हूं, अल्लाह करे कि मेरे ये फ्रांस के आशिका ने रसूल माशाल्लाह इतनी तादाद में जमा हुए हैं, पर्दे में इस्लामी बहने हैं, अगर ये सब इस फार्मूले को पकड़ लेना है, हमारी सोसाइटी हमारा घर हमारा माशरा अल्लाह ने चाह तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएगा। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, आपको आकर कोई कहता है फला ने यूं किया है, उमूमन ये होता है ना, आप एक जुमला सीख लें, कोई आपके पास इस बात का शरई सबूत है, बस एक जुमला सीख लें, पहले तो वो आपको पूछेगा शरई सबूत क्या होता है, बोला कोई गवाह कुछ सबूत कोई सी चीज है, और क्या आपको इस बात की शरीयत ने इजाजत दी है कि आप ये बात मुझसे कहें। दो तीन सवाल कर लें आप, यकीन माने जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आप तो बची जाओगे अल्लाह ने चाहो, हो सकता है वो भी थोड़ा सुधर जाए कि नहीं यार कहीं बात करेंगे तो ये यही पूछेगा आज भी, इसको इज्तिमा में समझा दिया था दावत इस्लामी वालों ने कि कोई तुमसे कोई बुराई बयान करे तो आपने क्या पूछना है, भाईजान आपके पास कोई शरी सबूत है, हमारे आप इंफॉर्मेशन का जरिया हो गया ये पोस्ट आती है, अभी यार पता चला तो जहां क्या पोस्ट आई थी ये लिखा था, और पोस्ट किसने भेजी किसने बनाई इसके पीछे कौन सा मुंह है कौन है,
कोई इंसान के रूप में शैतान है, कोई क्या है वो, क्यों कर रहे हो ये? ये भी कोई इंफॉर्मेशन का जरिया है? आप बताइए, इंफॉर्मेशन का जरिया है? इस पर कोई यकीन कर लेगा पूरी तरह कि ये आ गई? इसको पता चला न्यूज में आया, फला में आया, फला में आया, भाई को कंफर्मेशन कोई चीज है या नहीं है? ये तजर्बा है, आपको भी तजर्बा होगा, एक खबर आती है दो दिन के बाद की तरदीद आती है नहीं आती? अच्छा हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा, खबर इतनी बड़ी आती है, अभी तो खैर पेपर का इतना टाइम नहीं था आप लोगों में, अब तो वेब न्यूज हो गई है, ये तो हमारे न्यूज वाले भी जानते हैं, इतनी बड़ी लीड लगती थी किसी की बुराई की, इतनी बड़ी लीड मेन पेज की, और जब उसके बारे में पता चलता था कि जनाब ये खबर दुरुस्त नहीं है, तो अंदर में बैक पेज के छोटे से कोने में तर्दी छाप दी जाती थी, यानी इतने बड़े लेवल पर उसकी बेइज्जती की, और जब उसकी इज्जत बाहर करने लगा तो कहीं कोने में डाल दी, हमने तर्दी छाप दी थी। और भाई करो, अगर किसी ने ऐसी को पोस्ट निकाली है जिसके बारे में उसको पता है कि ये पोस्ट गलत थी, क्या वो सबसे माफी मांगेगा? मैं आपको बताता हूं, इसका जो वो मामला, जो आप ये जो बेइज्जतियां होती हैं कि जो दूसरों के साथ जो इज्जत इनकी उछालते हैं, इनके ताल्लुक से बाकायदा मैंने किताब में पढ़ा है कि बुजुर्गों ने लिखा है कि फिर उससे माफी मांगे, क्योंकि जिस पर तोहमत लगाई है उसको पता चला है ना। अच्छा तुम सबको बताए, एक को बताया कि ये गलत करता है, सौ को बताया गलत करता है, सौ से जाकर बोले कि मैंने जो तुमको बताया था ये झूठ था, है हिम्मत ताकत क्या बोल सको ये झूठ था? वरना फिर तैयार हो कब्र के अजाब के लिए, अशर के अजाब के लिए, अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए, जब अल्लाह पाक फरमाएगा कि बताओ जो तुमने बात की थी इसका सबूत दो, अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करेंगे? एक मुसलमान की इज्जत की कोई सोच भी हमें पता नहीं है। हदीस पाक में आकर बदतरीन सूद मुसलमान की इज्जत में हाथ डालना है, बदतरीन सूद, धड़ल्ले से बोल देते मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा दामाद ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरी साली ऐसी, मेरी नंद ऐसी, मेरी भाभी ऐसी, मेरा पार्टनर ऐसा, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरी कजन ऐसी, मेरा रिश्तेदार ऐसा, धड़ल्ले से बोल देते, पता ही कोई नहीं चलता। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें खुदा के आगे जवाब देना है या नहीं देना? यूं धार करके तो मुसलमान की इज्जत के फर्क क्या उड़ा दोगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे मुशर्रफा की तरफ फरमाते हैं कि मुसलमान की इज्जत तुझसे ज्यादा है, धड़ल्ले से हम मुसलमान की इज्जत को उछाल दोगे? कोई अच्छा बोलने वाला पूछने वाला नहीं हमको, कोई मुल्की कानून होता, कोई गीबत पर तो पकड़ता तो हम सिग्नल की तरह गीबत से भी बचते, जैसा सिग्नल तोड़ने से बचते हो, पता पत्ते को भी आ जाएंगे तो भी पता चल जाएगा, बचता है ना बंदा, कतल नहीं करता ना, और कतल नहीं करने दे, कतरे नाहक हराम जानने में ले जाने वाला काम है, और वाकई सही है सिग्नल नहीं तोड़ने, कानून पर अमल करना है, मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि जिस कानून के तोड़ने पर गवर्नमेंट पकड़ती है उस कानून को तोड़ने से डरते हैं, मगर जिस कानून के तोड़ने पर अल्लाह की पकड़ है हम उस कानून को तोड़ने से डर नहीं रहे। बदकिस्मती के साथ गीबत कितना बड़ा कानून तोड़ना है, चुगली कितना बड़ा, खुद नमाज कजा करना क्या इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि नमाज कजा कर दी है? कोई फर्क कोई जुर्म ही नहीं है ना हमारे बदकिस्मती के साथ, कोई कानूनी जुर्म थोड़ी है कि एक नमाज कजा की तो जनाब आपको पकड़ के ले जाएंगे, जैसे कि आप ट्रेवलिंग करते हो तो आपको वो डॉट लगता है या पॉइंट मिलते हैं, जो भी आपके एक सिलसिला होता है, अलग अलग मुल्कों का अलग अलग है, कैसे डरते हैं? स्पीड ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए, कैमरा आड़े बड़े पे कैमरा आ रहा है, कैमरा थोड़ा रुक जा, जैसे आगे बढ़ते फिर एक्सीलेटर दबा देते निकल गया, ये कैमरे से डर लगता है, तुम्हें खुदा के देखने से डर नहीं लगता? अल्लाह देख रहा है, उसकी पकड़ सकते है। आप सोचिए प्यारे स्वयं भाइयों, नंबर वन क्या भाई, आपके पास शरई सबूत है, कोई शरई गवाह है, कोई मुझसे बात करने की शरई इजाजत है? शरई शरई करे ना, इस्लाम और दीन है, आपकी इज्जत बचाने वाला भी इस्लाम और दीन है, उस मुसलमान की इज्जत बचाने वाला भी इस्लाम और दीन है, जब हम दोनों के दरमियान इस्लाम और दीन की बात आ जाएगी, आपकी भी इज्जत बची रहेगी, मेरी भी इज्जत बची रहेगी, मेरे दीन को मेरे इस्लाम को ही आगे रखो, जो हमारा दीन हमारा इस्लाम है, उसी ने आपकी मेरी इज्जतों की हिफाजत की हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पर फरमाया है कि मुसलमान का मुसलमान पर हराम है इसकी इज्जत, इसका माल और इसकी जान, कैसे होगा ये कि कोई इस तरह हमारी इज्जतों को और हमारी जान माल को उछाल कर चला जाए? आप पूछ लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, माहौल बदल जाएगा, क्लाइमेट बदल जाएगा, इन्वायरमेंट बदल जाएगा।
कोई शरीय सबूत है, कोई शरीय गवाह है? क्या शरीयत ना कोई इजाजत देती मुझसे बात करने की?
वो इतना सा मुंह हो जाएगा उसके चिड़िया जैसा, सड़े हुए तरबूज जैसा, ऐसा मुंह लेकर चला जाएगा वो। वो तौबा करनी पड़ेगी उसको कि भाई क्या बात करने के लिए जा रहा हूं। एक और बात आखिर में, मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। हदीस है, बड़ी जामे हदीस है, जवामीउल कलीम हदीस कहा गया इसको, इस हदीस को। मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए वही पसंद करता। मैं मिसाल देता हूं, आपके पास एक पोस्ट आती है, किसी की बेइज्जती है, किसी की जिल्लत है, किसी की रुसवाई है, किसी पर एलिगेशन है, आपने वो पोस्ट पढ़ी, आपने वो खबर पढ़ी। जब आपने पोस्ट खबर पढ़ी, अब मेरा आपसे सवाल है, अगर इसमें जिसका तस्करा है, वेरी सीरियस, हाँ मुझे सीरियसली जवाब दीजिएगा, इसमें जिसका तस्करा है उसकी जगह अगर आपका तस्करा होता, आप क्या चाहते हैं, इसको फॉरवर्ड करना या वही दबा देना? बताएं, प्लीज बताएं। दबा देना, जो चाहते हैं मैं इसको दबा देता हूं, आप बता दे, कोई नहीं यार, मैं आप पर्दे भाई से तो बात हो नहीं रही है, आप अपने में चाह रहे कि खबर दब जाती, उसकी क्यों आगे बढ़ा रहे हो? होती यहां इस फना की बेटी ने खुदकुशी कर ली, खबरें आती है ना, होती है कोई अपनी मां बहन की खबर, दबाते के बढ़ाते। कुछ सहाफी जर्नलिस्ट मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत के पास सैदान मदीना कराची में आए थे, मदनी मुजाकरा था, सवाल जवाब थे, यही मौजू चला। तो आपने इनको यही फरमाया कि आप ये जो खुदकुशियों की खबरें छापते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसी तो कई खबरें होती हैं, आप जो खुदकुशियों की खबरें छापते हो, अब जिसके घर में किसी बच्ची ने खुदकुशी कर ली या लड़के ने खुदकुशी कर ली, ये क्या ढोल बांधेगा कि मेरे बच्चे ने खुदकुशी की है? वो तो कोशिश करेगा किसी को पता ही ना चले कि खुदकुशी हुई है। अब आप जाकर खुरस ये जितना अंदर जाकर खबर निकालेगा उतना ही उतना अच्छा रिपोर्टर कहलाएगा, भले उसकी इज्जतों का कबर खोल के वो निकाल के ले आए। तो मैंने सुनत है मेरे पीरो मुर्शिद ने बड़ी प्यारी मिसाल दी इनको, बोला आप ये देखिए कि जो खबर आपने किसी की छापी, अगर वो खबर आप ही में से किसी की मां बहन की घर की होती, तो क्या आप चाहते कि इसी खबर बने? आप चाहते कि मीडिया पर आती? आप चाहते कि अखबार में आते? आप चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर होती? नहीं ना। तो जो अपने लिए पसंद करता है, मुसलमान अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। इतनी खूबसूरत मिसाल दी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके मेरे नबी, इन पर हमारी जान कुर्बान, हमारे माल, हमारा सब कुछ हमारे आका पर कुर्बान। मेरे आका ने कितना खूबसूरत माशरा दिया, जरा देखे तो सही, जैसी करनी वैसी भली, कमा तदीन तुदान, कितना खूबसूरत इरशाद अता कर दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप सोचते रहो, मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए वही पसंद करता है, सोचते रहे सोसाइटी कैसी होगी, माशरा कैसा होगा। मुसलमान जहां भी जाएगा अपनी इज्जत भी बनाएगा और इसके जरिए इस्लाम के नाम पे भी इंशाल्लाह ताला इस मतलब तरक्की होती चली जाएगी, क्योंकि मुसलमान है ना, जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, मोमिन वो है जिसकी हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अब बताइएगा, अब इस पर अमल हो गया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता अपने भाई के लिए वही पसंद करता है, इस पर भी अमल हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैंने अच्छा ही करना था कि वैसा अच्छा हो, इस पर भी अमल हो गया, किसी की बुराई बयान करूंगा नहीं, गीबत करूंगा नहीं, चुगली करूंगा नहीं, तोहमत लगाऊंगा नहीं, बोहतान लगाऊंगा नहीं, इस पर भी अमल हो गया, जैसे नमाज के वक्त होगा जाकर मैं नमाज अपनी वक्त की अदा करूंगा और सही नमाज पढ़ूंगा, कि कुरान कहता है इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई के कामों से, मैं नमाज अपनी दुरुस्त करूंगा, मैं नमाज दुरुस्त करूंगा, नमाज मुझे दुरुस्त करेगी। इतना खूबसूरत माशरा हो जाएगा। मुसलमान जिस मुल्क में रहे, अपने मुल्क में रहे या किसी गैरों के मुल्क में रहे, अगर वो अपने इस्लाम और अपने दीन की तालीमात पर अमल करते हुए रहेगा मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, उसकी भी इज्जत होगी, और हम चूंकि बड़ी तादाद पाकिस्तान से आती है, इंशाल्लाह हमारे वतन की भी इज्जत होगी कि यार ये पाकिस्तानी, पाकिस्तानी गुड, पाकिस्तानी अच्छे, पाकिस्तानी मदीना मदीना, ये जहां जाते हैं वहां पर अमन प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, ये मुसलमान दुनिया भर से जहां भी आते हैं अमन प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान मुनाफिकत कैसे करेगा, मुसलमान बददियानती कैसे करेगा, मुसलमान खयानत कैसे करेगा, मुसलमान बदकारी कैसे करेगा, मुसलमान शराब कैसे पिएगा, मुसलमान जुआ कैसे खेलेगा, इसको उसके अल्लाह के रसूल ने मना किया है। अब आप बताइए कि मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी रहेगा, इसका कारोबार करने का अंदाज एक बुजुर्ग बड़े अच्छा कारोबार करते थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। ये तिजारत इनका मामला ऐसा था कि अगर कोई ज्यादा इनको नफा दे जाता रहा तो इसको इनको भी तकलीफ होती थी कि ज्यादा नफा क्यों, जो कम जो है ऑलरेडी वही लूं। तो बाकायदा ये ग्राहक के साथ उलझ जाया करते, यानी कि नहीं कम नफा कम नफा कम नफा। यानी ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं कि एक बुजुर्ग के बारे में आया कि उन्होंने इसी तरह कारोबार में मामला किया और अपना नुकसान, तो क्या था मतलब दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों को नुकसान ना हो। तो ग्राहक पूछता है किसी से, भाई ये है कौन, ऐसा तो कोई भी नहीं होता दुकानदार। तो उसने कहा कि हजरत यूनुस बिन उबैद है रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम बताया? तो सैयदना यूनुस बिन उबैद। उसने कहा अच्छा ये है, जब हमारे इलाकों में बारिश नहीं होती ना तब इनका नाम लेकर दुआ करते अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है। वो ताजिर थे, कौन थे? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन अल्लाह का वली, कि बिजनेसमैन ताजिर ट्रेडिंग और अल्लाह का वली हो सकता है, झूठ ना बोले, बदियानती ना करे, धोखा ना दे, वादा खिलाफी ना करे, मिलावट ना करे, मिस डिक्लेरेशन ना करे, करप्शन ना करे, गैर मुस्लिम को भी धोखा ना दे, गैर मुस्लिम को धोखा देना भी ना जायज है। भाई वो इस्लाम और दीन के करीब कैसे आएगा? अगर इतनी जो मैंने आज आपको बयान किया फ्रांस में बैठकर, अगर मेरे तमाम तर दुनिया भर के मुसलमान जो फ्रांस में, यूरोप के दीगर मुल्कों में, यूके में, अमेरिका में, दुनिया के और मुल्कों में, इवन के अपने मुल्क में भी जो है, दुनिया में कहीं भी है, मुसलमान अगर अपने इस्लाम और दीन की बुनियादी बातों पर अमल करे, नमाज पढ़े, इबादत करे, नेकी करे, मुसलमान औरतें इस्लाम के जे उसूल के मुताबिक पर्दा करें, अजनबी मर्दों से बचे, गाने बाजे फिल्में ड्रामे मौसीकियों से बचे और इस तरह की बेहयाई और बेशर्मी से बचे, और मुसलमान अपने इस्लामी वैल्यूज के मुताबिक, इस्लामी अकदार के मुताबिक दुनिया के किसी कोने में भी रहेगा, इंशा अल्लाह ये अपने दीन का, अपने इस्लाम का नाम बुलंद करेगा, इसकी अपनी इज्जत बढ़ेगी। मेरी इज्जत मेरे दीन से है, मैं जितना मेरे दीन पर अमल करूंगा मेरा दीन उतनी मेरी इज्जत बढ़ाएगा, और इंशाल्लाह जितना महबूब का तस्करा करूंगा आका का उतनी मेरी इज्जत और बढ़ेगी, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। नबी पाक से इश्क, नबी पाक से मोहब्बत की अलामत यह है कि प्यारे इस्लाम भाइयों नबी पाक के इरशाद पर अमल करें। मैंने आपको कितने इरशादात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाए कि ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है, अब भैया अमल की तरफ आओ ना, अमल की तरफ आए। गुलामी है रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी है रसूल में एक मुट्ठी दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी है रसूल में सच्चाई और ईमानदारी भी कबूल है, होनी चाहिए ना। अल्लाह पाक हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि वो भी इन बातों पर गौर करें और अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करें, और कोई ऐसी जगह ना जाएं, ना किसी को ऐसी जगह आने दें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी इज्जत पर, आपकी पाक दामनी पर अल्लाह ना करे को उंगली उठे। अपनी इज्जतों की हिफाजत हर जगह की जा सकती है, वह इस्लाम और दीन उसूलों पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का खूब चर्चा